पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 126 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं इन्द्रसदवंदियाणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। ये आचार्य कुंदकंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नामक जो शास्त्र है, उस शास्त्र के 120 नंबर की गाथा को देखते हुए अभी हम पृष्ठ क्रमांक 45 पर आए हैं। यहाँ भावार्थ से हम चालू करते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में भावार्थ के ऊपर के प्रवचन आज देखते हैं। लोकमा जीव बे प्रकार ना छे, एक देहधारी अने बीजा देह रहित। देहधारी ते संसारी छे ने देह रहित जीव सिद्ध पर्याय ने अनुभवे छे। बधा थईने एक जीव नथी, जीव जातीय एक अने संख्याए अनंत छे। जात एक है सबकी, लेकिन क्या कह रहे हैं, संख्या अपेक्षा से अनंत है। देहधारी एटले के व्यवहार थी शरीर वालों कहवाय छे। जीव विकारी भाव करे छे, तेना निमित्ते कर्म बंधाय छे ने तेना फल मा शरीर मळे छे। प्रश्न पेज नंबर 46। आत्मा बिना देह इनी मेळे चाले छे, तो चालती वक्ते देह बराबर बारणामांथी
पेज नंबर बीजो हशे
निकले छे ने भीतमां केम भटकातो नथी। क्या 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 नहीं नहीं नहीं, ये प्रश्न क्या पूछा है ये समझ में नहीं।
आत्मा बिना देह इनी में चाले,
जीवोनी गतिनो ने आयुनो बंध क्रोधादि परिणाम।
अरे अरे
सॉरी सॉरी, पेज नंबर 45 पेज नंबर 45 लास्ट लाइन अपनी
भावार्थ के बाद जो प्रश्न वाला है ना, वहाँ से 120 गाथा के प्रवचन में भावार्थ के बाद प्रश्न।
आत्मा बिना देह एनी मेले चाले छे, तो चालती वक्ते देह बराबर बारणा माथी निकले छे अने भीतमा केम भटका तो नथी।
यानी बरोड़ कैसे निकलता है, तो भीत में से क्यों नहीं जाता, दरवाजे में से कैसे जाता है, ये प्रश्न है।
बारणा यानी दरवाजा, मैं बारणा यानी ये खिड़की समझा।
बारी यानी बारणा,
दरवाजा गेट
वही कह रहे।
समाधान, शरीर नी पर्याय शरीर ना कारणे थाय छे, तेमा आत्मा नो अधिकार नथी। जीव रागद्वेष करे के ज्ञान करे, पन देह नु काई पन करी शके नहीं। बन्ने पृथक छे, संसारी ने देह नो संबंध छे, एम निमित्त नु ज्ञान करावे छे, अने सिद्ध भगवान ने देह नु निमित्तपणु पण होतु नथी। वळी संसारी मा बे जातना जीवो छे, एक भव्य जीव छे जेम मग के अड़दना दाना पानी मा पाकी जाय छे, तेम तेनी जेम भव्य जीवो आत्माना श्रद्धा ज्ञान करी मुक्ति पामवाने लायक छे। ते जीवो देह ने विकार रही शुद्धात्मानु भान करी मुक्ति पामे छे। अने कोरडू मग ने तमे तेटला पानी मा कोरडू मग ने गमे तेटला पानी मा उकाळो के नीचे लाकड़ा वाळो, તો પણ તે કદી પાકતા નથી, તેમ અભવ્ય જીવ ગમે તેટલો ક્રિયાકાંડ કરે, હજારો રાણીઓ છોડે, પણ તે શુદ્ધ આત્માની રુચિ કરતા નથી, તેથી મુક્તિ પામતો નથી. બહુ પાપ કરે ને કસાઈખાના માંડે તે અભવી થાય, ને દયા દાનાદીના ભાવ કરે તે ભવી થાય એમ નથી. અને જો પાપ કરતા હોય અભવ્ય હોય ઓર પુણ્ય કરતા હોય ભવ્ય હૈ, એસા નહીં હૈ. યહાં તો યહાં બતા રહે ને, ક્યાં બતાએ, હજારો રાણીઓ છોડે અને મુનિ થાય તો વો તો શુભ પરિણામ હૈ, ફિર ભી વો અભવી કા અભવી રહેગા. ક્યાં કહે રહે, અભવ્ય ને ભવ્ય એવી બે જાત અનાદિતી છે. અભવ્ય અનંતા છે, પણ ભવ્ય જીવો તેના કરતા અનંત ગુણ છે, યાને અધિક ભવ્ય જીવો કી સંખ્યા હૈ, દોનો અનંતો મેં હૈ. અભવ્ય જીવો શરીરની ક્રિયા કરતા દેખાય છે, કષ્ટ સહન કરતા દેખાય છે, પણ તેઓ શરીર વિનાના આત્માની રુચિ કરતા નથી. એને શરીર રૂપી મેં હું એસી ઉનકી ઓર શુભ ભાવ સે હી ધર્મ હોગા એસી ઉનકી માન્યતા કાયમ ચાલુ રહેતી. શરીરને કષ્ટ આપવું કે નહીં, શરીરને કષ્ટ હોય નહીં. ક્યું એસા ક્યું કહે રહી બેન? હા, તો પૂતગલ મેં કષ્ટ યાને ઈચ્છા હી નહીં હૈ, યા ચારિત્ર ગુણ નહીં હૈ તો ઉસમે કિસી ભી પ્રકાર કે મુજકો કષ્ટ હોતા, યા આનંદ નામ કા ગુણ નહીં હૈ જો સુખ નહીં દુઃખ હૈ, એસા કુછ નહીં હોતા. વો તો અલગ, વો તો એક્સેપ્ટ કરને કી બાદ, મતલબ જ્ઞાન હોને કી બાદ. પણ ક્યાં કહે રહે, દેખો દેખો ફિર સે, શરીરને કષ્ટ આપવું કે નહીં? તો કહેતે શરીરને કષ્ટ જ હોય નહીં, ક્યોંકિ ઉસમે સુખ ગુણ હિ નહીં હૈ તો ઉસકો દુઃખ હોને કા સવાલ હિ નહીં હૈ. ઓર જ્ઞાન ગુણ હૈ હિ નહીં તો જાનને કી ભી શક્તિ નહીં હૈ. આત્માને
અગર યહાં પે અપને કો કુછ લગા દુખ રહા હૈ તો યે શરીર કો દુખા એસે હમ લોગ ફીલ કર રહે હૈ, દુખ હુઆ આત્મા કો, તો આત્મા મેં ભી દુખ નહીં હૈ, શરીર મેં ભી દુખ નહીં હૈ, તો યે દોનો મિલા કે કૈસે દુખ હુઆ?
દેખો આત્મા મેં સુખ નામ કા ગુણ હૈ, ઉસમે વિભાવ ઉપરનતિ જો દુઃખ સ્વરૂપ હૈ. અબ દૂસરી બાત શરીર કે પ્રતિ આપના ઇતના મહત્વ પરિણામ હૈ, ઇતના એકત્વ ભાવ હૈ કે શરીર કો કુછ હુઆ તો મુજકો કુછ હુઆ, એસા સહજ ભાવ હોતા હૈ ઉસ જીવ કો. ઇસલિયે યહાં કીલા લગા યા કુછ ભી ઇન્જેક્શન કિયા, શરીર કો જખમ હુઈ, પણ શરીર મેં એકત્વ બુદ્ધિ હૈ. ઇધર ચિર ફટતે હૈ
વો તો શરીર, શરીર તો ઠીક હૈ ઉસી પ્રદેશ મેં, યે તો ભિન્ન હૈ ના, તો ક્યું દુખ હુઆ?
યે મેરા હૈ બરાબર. અચ્છા પ્રશ્ન હૈ, ક્યોંકિ એસે બહુતો કો પ્રશ્ન ઉઠતે હૈ ઓર ઉઠને ભી ચાહીએ. લેકિન શરીર મેં અભી દેખો ના, બુખાર યાને શરીર ગરમ હોતા હૈ, યે પૂતગલ હૈ તો ઉસમેં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ ગુણ હૈ, તો સ્પર્શ ગુણ કી ગરમ હોને કી પર્યાય શરીર કી હૈ. આત્મા મેં સ્પર્શ ગુણ નહીં, આત્મા કભી ગરમ ના ઠંડા કુછ ભી હોતા હૈ, લેકિન યે શરીર હી મેં હું, અરે રે મુજકો બુખાર આયા, એસા હમને ઉસમેં એકત્વ બુદ્ધિ રખી હૈ, ઇસલિયે મુજકો બુખાર આયા એસા માન કે રખા હૈ. ઓર હમ ડોક્ટર કે પાસ જાકે દવા ભી ખાતે હૈ, ક્યોંકિ શરીર મેં અભી એકત્વ બુદ્ધિ હૈ. સુનના, અભી યે બહુત અચ્છા પ્રશ્ન પૂછા, ઇસમે દો બાતે હૈ, એક દર્શન મોહ હૈ ઓર એક ચારિત્ર મોહ હૈ. યાને જો દર્શન મોહ હૈ જિસકા ઉદય, વહ જીવ મિથ્યા દૃષ્ટિ હૈ, ઓર જિસકો દર્શન મોહ કા ઉદય નહીં લેકિન ચારિત્ર મોહ હૈ, વો સમ્યક દૃષ્ટિ હૈ. તો સમ્યક દૃષ્ટિ જીવ કો ભી, ભૂખ લગેગી તો ખાના ખાયેગા, બીમાર હોયગા તો દવા ખાયેગા, લેકિન ઉસમે ક્યા હૈ, શરીર મેં એકત્વ બુદ્ધિ નહીં હૈ, लेकिन अभी शरीर के प्रति राग है, और मिथ्या दृष्टि के शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि भी है और राग बुद्धि भी है। ख्याल में? फिर से प्रश्न पूछते हैं, शरीर ने कष्ट आपू के नहीं, शरीर ने कष्ट हो नहीं, आत्मा ने पर्याय में कष्ट हो, ते कष्ट तो पाप छे, कष्ट धर्म कष्टदायक न हो, लोगों ने धर्म नी खबर नथी, जे काई आर्त ध्यान ना परिणाम थाय छे ते पाप छे, पुण्य नथी ने धर्म तो नथी ज, जे भाव ती दुख लागे ते भाव धर्म तो नथी ज, पन पुण्य नथी। नहीं, क्योंकि शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं ना, शरीर से मैं जुदा हूं ये तो पक्की खातिरी उनके। अब सुनना, आप कहां रहते हैं? ये महाराष्ट्र बैंक के ऊपर पेपर में छप के आया, आप यहां नहीं है, आप कहीं बाहर गांव गई है, सूरत गई है, राजकोट गई, कहां जाने का, वहां आपने पेपर में पढ़ा कि सायन में महाभयंकर आग। अरे मैं तो सायन में थी, लेकिन वो जो महाराष्ट्र बैंक वाली बिल्डिंग है उसके बाजू वाले बिल्डिंग में आग लगी थी, तो फिर कैसा हुआ? हाँ, अपनी तो जगह ठीक ठाक है, ख्याल में है ना। वैसे यहाँ पर मुनिराजों को ये निश्चित डेफिनेटली खातरी है कि शरीर रूप में नहीं हूँ, शरीर को जो होता है वो उनके ज्ञान का गेय है, उनको दुख नहीं होगा।
क्यों दुख नहीं है? तो उनके लिए वो पुण्य है।
अभी ऐसा है कि वो स्वरूप में रमणता है, वो तो शुद्धोपयोग है, और जो 28 मूल गुण आदि पालन करते, केश लोच आदि करना, वो तो शुभ परिणाम है, पुण्य परिणाम है। अच्छा है, आप सही अच्छे प्रश्न पूछते हैं, इसमें पता लगता है कि आपको इंटरेस्ट जागृत हो गया है और सही और गलत का निर्णय करने की आप कोशिश कर रही है। बहुत बढ़िया।
यानी केवल कष्ट सहन करना या पुण्य नहीं, ये कैसे, जैसे शरीर ही मैं नहीं हूँ तो उसको वस्त्र धारण करो कि चप्पल पहनो, कि वो ये भाव ही नहीं होते, ये भाव ही उत्पन्न नहीं होते, यानी उनके ऐसे भाव ही उत्पन्न नहीं होते है कि शरीर के लिए कुछ उसको नहलाऊ। उनके तो स्नान व्रत होता है, तो वो शरीर को नहलाना सजाना उसको बराबर, जैसे गृहस्थ जीवों के जो भाव आते वैसे उनके कुछ भाव ही नहीं आते। चप्पल क्यों पहनते हैं? अरे कुछ गंदा नहीं होवे और कुछ कांटा नहीं लग जाए, तो ये तो शरीर मैं हूँ ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसे उनके तो हर समय उनका संवेदन चल रहा है।
देखो देखो, चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव होंगे उनके तो मैं शरीर से जुदा हूँ ऐसी पहले तो श्रद्धा हुई है, लेकिन जैसे जैसे मुनि अवस्था प्राप्त होती है वैसे वैसे तीन कषाय चोपड़ी का वहाँ अनुदय है, यानी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, सिर्फ बाकी कौन सा है तो संजोलन क्रोधमान मालूम। तो अभी उनके स्वरूप में इतनी अधिक स्थिरता होती है तो स्वरूप का आनंद का जो कोई अनुभव है वो बहुत प्रचुर आनंद है, और शरीर रूप में नहीं हूँ इसमें तो अभी 100% खातरी हो गई है। 100% खातरी तो चौथे में भी है, वहाँ 75 या 99% है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी चारित्र मोह का उदय उधर अधिक है। यहाँ क्या है, स्वरूप में स्थिरता अधिक है और चारित्र मोह में खाली वो चार संजोलन और क्रोधमान मायलोभ और क्या बोलते हैं नौ कषाय अभी बाकी है, यानी उनके तो इतनी स्वरूप की पहचान हो गई है कि शरीर रूप मैं नहीं हूँ ये निश्चित उनका हो गया।
जुदाई अत्यंत तीव्रपणे भाषित होती, जैसे अभी हम अपने घर की बात करते हैं और कोई दूसरे का घर है चार बिल्डिंग में, उसके घर में क्या उसकी दीवार गिर गई, क्या कलर चल निकल गया, तो जो कुछ हो रहा है तो हमें क्या उसके विकल्प भी नहीं आते उसके कुछ करने के। जो बाहर रस्ते पे एक पेड़ है तो उसके पत्ते गिर गए और वो सूखा सूखा दिख रहा है, तो पत्ते पीले पड़ गए, तो
तो जाके हम उसको हरा रंग देंगे क्या वहाँ जाके? ऐसे कोई यानी ऐसा विचार तक नहीं छुएगा। वैसे शरीर के प्रति तो इतनी उदासीनता उसके, क्योंकि भिन्न आत्मा का सतत अनुभव चल रहा है, सतत अनुभव चल रहा है, तो सारे विकल्प भी आत्मा संबंध ही चलेंगे उनके। किसके बात के लिए? अपने अपने में क्या पहले क्या
फीलिंग करते
हैं,
और दिखाई भी देता है, मतलब उनका अंदर का पूरा पोर्शन दिखाई देता है हम लोग को, जो क्लैरी वंस तो वो सब मिथ्या ज्ञान है, मतलब विभंग ज्ञान है कि अवधि, क्योंकि मुझे तो पहले वही नहीं मालूम, तो कल मेरे को पता चला विभंग
विभंग ज्ञान, क्योंकि उनके तो समय दर्शन तो है नहीं है।
नहीं, लेकिन वो लोग है ना बहुत आत्मा के लेवल तक का मेडिटेशन करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम लोग को ऐसे अनुभव हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर
पर उनकी मान्यता कैसी है देव के बारे में, मुनियों के बारे में, ये हमको निमित्त की ओर से देखकर हम उसका अनुमान लगाते हैं क्या उनके देव के बारे में मान्यता सही है?
क्या सुप्रीम गॉड मतलब वो सुप्रीम गॉड वो एक ही है, और
वो करने वाला है, वो एक है कि अनंत है?
जो है वो उनकी जो लेकिन वो कुछ नहीं करते है, लेकिन उनकी सहायता के हेल्प से हम लोग ये सब कर रहे हैं।
हाँ, ये उनकी मान्यता जो कुछ है हाँ वो गलत है। तो उनके विभंग ज्ञान हो सकते हैं जिसको हम कहेंगे, वो तो जानवर रहने त्रिलेंचों को भी होता है, हमने देखा था, और वो किसी किसी हाँ वो ऑन एंड ऑफ ऑन होता रहता है, तो कंटिन्यूस उसका रहता भी नहीं है, अंतर्मूत रहकर फिर छूट भी जाता है, उस समय उनके हो सकता है, ऐसे कोई उसमें चमत्कार की कोई बात नहीं है, और वो हाँ वो तो होता है ना, कौन कौन से
नहीं
उसको को अवधि ज्ञान
यही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बराबर हो रहा है, ऐसे मेरे को फील हुआ था, वो सब कोर्स किया, फिर इधर से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
पहले में पहले ये बात नक्की करो कि वो कोई आपके जो कोई हीलिंग सिखाने वाले हैं वो दूसरों को मैं ठीक कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता है ना उनकी?
नहीं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग को मास्टर ने हमको निमित्त बनाया, ऐसा बोल रहे
हैं। यानी वो करने वाले अलग कोई है और ये निमित्त है, तो करने वाला अच्छा एंजल्स भी निमित्त बन रहे हैं, यानी निमित्त से कार्य होता है ये उन्होंने माना कि नहीं, तो उनको समय तो है नहीं, ये निश्चित हो गया,
यानी वो विभंग ज्ञान का तरीका हो सकता है, क्योंकि वो तो हीलिंग के जैसे अलग अलग।
अभी मैं आपसे पूछता हूँ, वो हीलिंग की बात छोड़ दो, भी डॉक्टर्स जो होते हैं रेगुलर डॉक्टर, उनको जो दवा लेने जाते हैं सारे पेशेंट ठीक होते हैं? उसमें कुछ ठीक होते हैं कुछ ठीक नहीं होते, ऐसे ये हीलिंग की जो बात है नेचुरल हीलिंग जिसको कह रहे हैं ना आप, नेचुरल हीलिंग से कुछ लोग ठीक हो जाते हैं,
मेडिकल जो कुछ होते हैं मेडिसिन से अन्य जो तरीके होते हैं
हाँ, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं कुछ लोग ठीक नहीं होते, अगर वो 100% सभी को ठीक करेंगे सुनना हो तो बाकी डॉक्टर्स वॉक्टर सब लपेट जाएंगे और सभी उन
नहीं
बोलने जाने दो उनको, हम पहले नक्की करते हैं कि वो कर सकते हैं कि नहीं। हमने तावीज दी था ना आपको, एक दरवाजे दूसरे दरवाजे का कुछ नहीं करता है, बस उसको लगा लेना। आगे देखें हर हमेशा होता है कि नहीं देख लेना,
जिसको ठीक होने का समय आया तो वैसा निमित्त मिला, अभी उसमें निमित्त में भी निमित्त ढूंढेंगे
तो
डॉक्टर उनकी दवाई से भी तो
ठीक है, अगर ऑपरेशन किया तो ठीक हो गए तो ऑपरेशन में तो कुछ तो किया कि नहीं
ऐसा कुछ नहीं
तो जहाँ वो ठीक होने का समय आया तो वैसा निमित्त मिल जाता, ये कहते हैं इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। जैसे एनेस्थीसिया दिया और उसको पता नहीं चला ऑपरेशन का, उसमें क्या हुआ तो उसकी ज्ञान की हीनता होने का ऐसा स्वकाल था, तो उसमें कर्मों का निमित्त ओरिजिनल निमित्त कर्म का है, और उसका बाह्य निमित्त ही कोई डॉक्टर ने उसके एनेस्थेशिया दिया। ये बहुत सारे एक ही निमित्त ने अनेक होते हैं।
मैं आपको बता दूं, हमारे पहचान के एक भाई हैं, वो नेचुरल हीलिंग करते थे, यानी वो खुद पे भी उसने किया था और वो दूसरे को भी कर रहे हैं, लेकिन उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो दांत अभी तक 7-8-10 डॉक्टर को दिखाया, बॉम्बे हॉस्पिटल तक जाके दिखाया, लेकिन उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। वो स्वयं नेचुरल हीलिंग करने वाला है, उसका कोई जो गुरु है वो भी कर रहे हैं, सब उसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो गए 2-3 साल से ऐसे ही तकलीफ में है। ये जो बात बनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास एक ऐसी बहन है कि वो क्या करती है, वो
रेकी
भी वो वैसे ही है ना,
इसमें भी रेकी करते हैं।
रेकी एक प्रॉब्लम, एक तरीका आप जानती है। तो एक शादी में गए थे तो एक का कुलूप जो था उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, कपाट की चाबी। बोले रुक जाओ, बोले क्या है, मैं रेकी करती हूँ। मैं वो आधा घंटा उसने क्या किया भगवान जाने, वो ताला खुला ही नहीं। अब क्या करें बोलो, रेकी तो किसी के रोग बीमारी को ठीक करने के लिए होते हैं, वो ताला खोलने के लिए।
रेकी की बहुत है, अभी ये सब आती रेकी भी, वो रेकी करके आते और फिर उसमें हम हमला करते, ये सब चलती बातें। एक विशिष्ट उसका जो कुछ
नहीं, आपको कुछ अलग अनुभव है, हमको कुछ अलग अनुभव है। अभी हम भी तो दवा लेते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तब दवा लेते हैं, लेकिन वो हमारी जिसको हम कहते हैं कि मैं शरीर से जुदा हूँ, ये मान्यता में खोट है। अभी कहीं ना कहीं राग बाकी है शरीर के प्रति, इसलिए दवा खाते हैं। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, ऊपर से चौथी लाइन जवाब की, जड़ शरीर ने दुख थतू नथी, पन अंदर रहेलो जीव शरीर साथे ममताना परिणाम करे छे ते दुख छे। आपके प्रश्न का उत्तर इधर आ गया। माटे जे जीव धर्म क्रिया करे ते दुख भोगवे ते बराबर नथी। यानी ऐसा बोलते हैं ना, जास्ती पहला दुख सहन करो तो अपने आप सुख मिल जाता है, तो ये बात धर्म के बारे में बिल्कुल गलत है। क्योंकि मोक्ष जो है वो अनंत सुख का ऐसी अवस्था है, वो प्राप्त करने के लिए दुख सहन करना पड़े ऐसा होगा तो कोई जाएगा ही नहीं। क्योंकि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है वह भी अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है, और वो अभी तक उसने कैसा अपूर्व आनंद कभी चखा नहीं है, उसको बार बार चखने के लिए उसकी अंदर से ऐसी जागृति होगी और वो अपने स्वरूप का और स्थिरता से अनुभव करने का प्रयत्न करेगा। ऐसे करते करते वो चौथे पांचवें सातवें गुणस्थान यानी आगे आगे बढ़ेगा, यानी वो सारा अतीन्द्रिय सुख का ही वेदन है। अभी आपको बताया 28 मूल गुण पालन करने का, आपने दो बातें बताई, केश रोज करते हैं या बेयर फुटेड चलते हैं, तो उनको तो शरीर के प्रति कोई ममत्व परिणाम ही नहीं। और यहाँ कहते हैं शरीर ना प्रति ममता ना भाव ते दुख छे, और वो ममता के परिणाम जो है वो दुख रूप है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे के प्रति बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि इतने ममत्व परिणाम अपने होते हैं, अरे उसको बीमार पड़ गया उसको तकलीफ होने लगी तो उससे अधिक तो अपने को होती है, यानी वो ममता का परिणाम ही दुख रूप है, ये कहना चाहते हैं। अगर ममत्व नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। देखो कल एक बात ऐसी निकली थी, आप थी शायद, कि जो चक्रवर्ती राजा होता है वो हम तो आजकल के जो कॉमन मैन है वो तो एक पत्नी व्रत वाले हैं, तो एक पत्नी को छोड़ने को कितना दुख होता है उनको, या पति पत्नी को पति को छोड़ने में। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि वो चक्रवर्ती जो होता है 96,000 रानियों को छोड़ के मुनिव्रत धारण करता है, यानी वो जब शादी भी किया है, 96,000 रानी भी की है, तब भी वो समकीति है और इस राग से मैं भिन्न हूँ ऐसी उनकी भी वहाँ खातरी है, फिर भी अभी चारित्र मोह है तो शादी करता है। बच्चे भी होते हैं उनको, 32,000 पुत्र होते हैं उनके। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे होते हुए भी वो सम्यक भी है और शरीर से मैं जुदा हूँ ये पक्की खातरी है। लेकिन अपने को थोड़ा सा ऐसा लगता है ऐसा कैसे होगा, हम मिथ्या दृष्टि, हम भी जानते हैं कि शरीर से जुदा और फिर इतना मोह, मोह की कुछ कह नहीं सकते। ये चारित्र मोह जो होता है वो बहुत हावी हो सकता है। हाँ तो क्या कहा, नीचे से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, पर अंदर रहेलो जीव शरीर साथे ममताना परिणाम करे छे ते दुख छे। माटे जे जीव धर्म क्रिया करे ते दुख भोगवे ते बराबर नथी, धर्म शांतिदायक अने आनंद दाता छे। हूँ आत्मा,
आत्मा ज्ञाता द्रव्य,
कहल हूँ आत्मा ज्ञाता द्रव्य छू एवा भान पूर्वक अंतर शांति ने आनंद प्रकटे ते धर्म छे, ने कष्टदायक लागे ते अधर्म छे। अज्ञानी जीवो चारित्र ने दुखदायक माने छे, ने महावीर भगवान संबंध में कहे छे के भगवाने अन्न करीने बांधू नहीं,
खादू नहीं,
अन्न करीने खादू नहीं, पानी करीने पीधू नहीं, सुखे करीने सुता नहीं, एम माननार जीवो चारित्र ने कष्टदायक माने छे, ते वितरागताना स्वरूप ने ओळखता नथी, चारित्र तो शांतिदायक छे। ये मान्यता शायद इसमें होगी क्या, हाँ श्वेतांबरों में है, क्योंकि तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि भगवान अन्न करीने खादू नहीं, पहले तो वो खुद पकाएगा नहीं, पकाने का भाव भी नहीं होगा क्योंकि भगवान है ना, वो
करीने पीधू नहीं, बनाने की बात नहीं,
वो लोग तो मानते हैं ना भगवान खाते थे।
नहीं पर ये वाक्य पद्धति कैसे, अन्न करीने खादू नहीं, पानी करीने पीधू,
अन्न करीने खादू नहीं लिखा ना भाई, कैसा है, कोई लाके देवे और नहीं खावे ऐसा,
नहीं 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 पानी करीने पीधू नहीं, सुखे करीने सुता नहीं, यानी वो वाक प्रचार है कुछ ऐसा, वाक
प्रचार है।
अच्छा मैंने अलग अर्थ किया, अन्न करीने खादू नहीं, अन्न होता हुआ भी खाया नहीं,
कोई भी लेके आया तो खाया।
बात तो ऐसी है, मुनिराज कभी दूसरों से खा के मंगा के खाते ही नहीं है और हर घर में जा जा के मांगते नहीं है, वो तो चलते हैं सामने, कोई ऐसे जिसको कहते हैं हम श्रावक श्राविका खड़ी है तो उनको आदर पूर्वक उनको पधराते हैं तो वहाँ रुकेंगे, फिर उनको नवधा पूर्वक भक्ति से उनको पधराएंगे तो ही अंदर जाएंगे। वो तो अलग है, वो तो और आगे बात है। और ये यहाँ क्या मानते हैं श्वेतांबरों में, हम पहले जैन सोसाइटी में रहते थे तो एक दिन बेल बजा के एक साधु आए, क्या साधुआ है कौन मानो याद नहीं, तो मैंने वो पहले से मैं तो दाढ़ी रखता था तो ऐसा दरवाजा खुला, अरे हाँ मिथ्या छे। उस समय मैं मिथ्या क्या है ये जानता नहीं था यार, मैंने कहा मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, शायद उसने सोचा होगा गुजराती का घर है दाढ़ी वगैरह रखे तो मिथ्या छे बोलता होगा, फिर अभी तो पता लगे कि मैं मिथ्या नहीं वही मिथ्या है, क्योंकि जो घर घर जाके खाना मांगता है वो साधु नहीं होता है। ऐसा है क्योंकि साधु का स्वरूप अपने को मालूम नहीं है, इसलिए हमें सच्चे देव गुरु का स्वरूप ही मालूम नहीं है तो सम्यक दर्शन कैसा होगा, ये तो जैसा जिस समय जो समय आएगा वैसा हम आपको जहाँ पॉसिबल है वहाँ तीनों का स्वरूप बताए। अभी तो आपको भगवान के स्वरूप की बात की है, थोड़े दिन जाने दो फिर गुरु के भी स्वरूप की बात करती, ये अपनी यहाँ बैठती है ना, क्या नाम है उसका, सुशीला बेन, वो पहले ऐसा ही झगड़ा करती थी कि हमारा साधु मिथ्या दृष्टि ने, तुम्हारा साधु सम्यक दृष्टि, एम केम, ये तुम्हारा मन खाली सम्यक तो था, પેલા અમારા તમારી વાત નહીં કરો, તમે છ મહિના સાંભળો પેલા. ઓર અભી તો ઇતની ચુસ્ત હો ગઈ હૈ, વો કિધર જા રહી હૈ? કચ્છ જા રહી હૈ. તો વો બોલતી હૈ કે મેં જાઉંગી લેકિન અપાસરા મેં નહીં જાઉંગી. અભી બોલ કે ગઈ કુછ? નહીં નહીં, સબ જગહ ચલ રહા હૈ, દિગંબરો મેં ભી એસી ખટપટી ચલ રહી હૈ. હમેં તો પરકે તરફ દેખના નહીં હૈ બહેન, જો સત્ય સ્વરૂપ હૈ ઉસે જાનના હૈ, ઓર અપના લોટા પાણી છાન કે પીના. યાને સમજી કે નહીં? હમ પીના પાણી હૈ તો લોટા છાના હુઆ હૈ ના દેખને કા. વો ક્યા કરતે? અરે ઉસને નહીં ક્યા, તીન ઘંટે સે તો એસા હી પાણી રખા થા. એસા ઉસ પરકે તરફ મત દેખો. તો બસ હમ અપને સ્વભાવ કે તરફ દેખ કે અપને મેં એકાગ્ર હોકે ઉસી કા અનુભવ કરને કી કોશિશ કરના. અભી કિતને સાધુ હૈ. અભી હમ અમેરિકા મેં ગયે થે તો એક ભાઈ એસે આયા હમારે પાસ, બોલને લગે કે આપને કોઈ ભાવલિંગી સંત યાને સચ્ચે સાધુ કો દેખા હૈ ક્યા? ઉનસે મુલાકાત હુઈ કે આપ જરા ઉનકા એડ્રેસ પતા હમકો દેના. મેને કહા ક્યું, ક્યા બાત હૈ, કાહે કે લિયે ચાહિયે? ને હમકો ઉનસે જાકે બાતચીત કરની હૈ. મેને કહા બાતચીત કરને સે ક્યા હોગા? ને હમકો ઉનસે પ્રેરણા મિલેગી તો હમ ભી સાધુ બનેંગે. મેને કહા એસા કભી હોગા હી નહીં, પહેલે મેં પહેલે યે તો નક્કી કરે કે તુમ જબ તક હિન્દુસ્તાન લૌટોગે તબ તક વો ઉસી જગહ પે હોના ચાહિયે. ઓર કોઈ કિસી કો દેખ કે ઉસસે સમ્યક તો નહીં લે સકતા હૈ. જબ તક આપણે સ્વભાવ મેં લીનતા નહીં હોતી તો સમ્યક તો કી બાત હી નહીં હૈ. યાની યે તો એસે હી ખાલી ઉનકો યહી બતાના થા કે આપ મેં કોઈ ભાવલિંગી સંતિ નહીં હૈ. એસા એસા ઉલ્ટા ઉલ્ટા બાત કરકે દેખો અભી આગે બઢતે હું. ગરમીમાં ઠંડી હવા વગેરે શાંતિદાયક લાગે છે તેમ સંસાર રૂપી તાપમાંથી બચી આત્માના ભાનપૂર્વક ચારિત્ર પ્રગટે તે શીતલીભૂત છે તે, તેથી અનાદિનો તાતાપ ટળે છે. અજ્ઞાની જીવ માને છે કે હું પરપદાર્થને અનુભવું છું પણ તે પદાર્થને અનુભવતો નથી પણ રાગનો અનુભવ કરે છે. ક્યા કહેના ચાહતે? હમને લડ્ડુ ખાયા, વાહ બહુત બઢિયા હૈ. તો હમને ક્યા સોચા કે મેને લડ્ડુ કા સ્વાદ લિયા. યહાં તો કહેતે કે લડ્ડુ કા સ્વાદ તું લે હી નહીં સકતા હૈ ક્યોંકે તું તો સ્વયં જીવ દ્રવ્ય હૈ ઓર લડ્ડુ તો પુદગલ દ્રવ્ય હૈ. દો દ્રવ્યો મેં અત્યંત અભાવ હૈ તો જિસકા જિસમે અભાવ હોગા ઉસકા વો અનુભવ કૈસા કરેગા? લેકિન મેરે કો તો મીઠા લગા ના સબ. તું અપને રાગ કો વેદ રહા હૈ ખ્યાલ મેં. ઓર યે ક્યા હૈ? વો મીઠા હોના ઓર યહાં મીઠા કા રાગ હોના દોનો એક સાથ હોતે તો હમકો લગતા કે લડ્ડુ મીઠા હૈ. હમ દૂધ પીતે હૈં તબ કભી કભી શક્કર ભૂલ જાતે હૈ તો હમકો સ્વાદ ઉસકા અલગ આતા હૈ તો હમકો પતા લગતા કે ઇસમે શક્કર નહીં હૈ. તો બિના શક્કર કા સ્વાદ કા રાગ અપના ઓર વહાં બિના શક્કર કા દૂધ દોનો એટ અ ટાઈમ હોતા હૈ. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હૈ ઇસલિયે હમે એસા લગતા હૈ કે મેં પર પદાર્થો કા સ્વાદ લે રહા હું. દેખો ક્યા કહે રહી? અજ્ઞાની જીવ માને છે કે હું પરપદાર્થને અનુભવું છું પણ તે પદાર્થને અનુભવતો નથી પણ રાગનો અનુભવ કરે છે. આત્માના ભાન દ્વારા તે રાગને ટાળીને રાગરહિત શાંતિનું વેદન કરવું તે ચારિત્ર અને તે તપ છે. અને હમ તપ કિસકો કહેતે હૈ? તો બાહ્ય વસ્તુમાં તપ નહીં હો સકતા હૈ. સ્વરૂપ મેં જો રમણતા હૈ, સ્થિરતા હૈ, એકાગ્રપણા હૈ, વહી ક્યા કહેતે હૈ? ચારિત્ર હૈ, વહી તપ હૈ. અજ્ઞાનપૂર્વકના તપને બાળ તપ કહે છે. જગતમાં અભવી જીવો છે ને ભવી જીવો પણ છે, છે ને છે ને છે, તેનો સ્વભાવ છે. એટલે ભવીપના બી ઉસકા સ્વભાવ, અભવી ये पारिणामिक भाव तीन प्रकार के बताए ना, एक जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। आम केम एवो प्रश्न स्वभाव मां नथी, यानी क्या कहते हैं, करेला जो होता है वह कड़वा क्यों, केम उसका स्वभाव है, शक्कर जो है मीठी क्यों उसका स्वभाव है, नमक जो होता है खारा क्यों उसका स्वभाव है, अग्नि गर्म होती है उसका स्वभाव है, तो स्वभाव में कोई प्रश्न नहीं होता। आम केम एवो प्रश्न स्वभाव मां नथी, आत्मानो स्वभाव त्रणे काळना ने त्रण लोकना पदार्थने जाणवानो छे, एम ओळखान करे तेने हूँ भवी छू एम ख्याल मां आवी जाए छे। यानी वैसा अनुभव कब होगा कि जब अपने आत्मा का अनुभव होगा, तो मेरा स्वभाव कैसा है, तीन लोक और तीन काल के सारे पदार्थों को जानूं और देखूं, ऐसा मेरा स्वभाव ये अनुभव से नक्की किया तो सम्यक हो गया, तो भव्य हो गया। केवल यहां पढ़ने से नहीं 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 तुम मैं भवी हूं ऐसा नहीं कह रहे ने, बीजा भवी ने अभवी आत्मा छे एम ते ख्याल करी ले छे, आ प्रमाणे जीवनी जातनी वात करी। अभी 121 नंबर का गाथा जो है 121 नंबर की पढ़ते हैं।
नहीं दियानि जीवा काया पुनच्छप्पयारपन्नता जम हवदिते सुजानम जीवोत्यतम परुवेन्ति। नहिन्द्रियाणि जीवा काया पुनः षट् प्रकारा प्रज्ञप्ता यद्भवति तेषु ज्ञानम् जीव इति तत्प्ररूपयन्ति। रे इन्द्रियो नहि जीव षट्विद कायपण नहि जीव छे छेते मनामा ज्ञान जे बस तेज जीव निर्दिष्ट छे।
यहाँ क्या बता रहे, जीव को कैसे पहचानना, क्या बता रहे हैं, षटविद काय, ये षटविद काय क्या होता है मालूम है आपको, नहीं हाँ बोलो बोलो, छटका एक जीव बोलते हैं ना, छकाय जीव, छकाय तो षटविद काय, ये पण जीव नथी अने इंद्रियो पण जीव नथी, हमने एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय, लेकिन वो इंद्रिय जो सहित वाला जो जीव है उसको पहचानने के लिए एक इंद्रिय आदि कहेंगे, लेकिन इंद्रिय जीव नहीं है, एक इंद्रिय नहीं बताए, इंद्रिय जीव नथी। अने षटविध काय ने छह प्रकार के षटकाय छकाय जीव पण जीव नहीं, नहीं जीव छे छे तेना तेनमा तेमनामा ज्ञान छे बस, यानी जिनमें ज्ञान है वही जीव है। देखो इसके लिए हम आराम से समझ सकते हैं कि जो हमारा चालता बोलता अभी ये व्यक्ति दिख रहा है, पांच मिनट में उसका मरण हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, अभी ये निर्जीव हो गया, यानी वहां जानने देखने वाला जो कोई पावर यानी जीव थी, जीव था वो रहा नहीं वहां, तो अभी जो कुछ बाकी है वो खाली कलेवर है शव, तो उसमें तो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान जिसमें है वह जीव। क्या कहा देखो देखो, छे तेम नामा ज्ञान जे बस तेज जीव निर्दिष्ट छे, निर्दिष्ट छे यानी कहने में आया है, ये कौन कहता है, तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं। व्यवहार थी केवामा आवता एकेन्द्रियादि तथा पृथ्वी कायादि जीवो मा इंद्रियो जीव नथी, अने छ प्रकारनी शास्त्रोक्त कायो पण जीव नथी, तेमनामा जे ज्ञान छे ते जीव छे एम प्ररूपे छे। अन्वय नहीं इंद्रियानी जीवा व्यवहारती केवामा आवता एकेन्द्रियादि तथा पृथ्वी कायादि जीवोमा इंद्रिय जीव नथी, अने छ प्रकारनी शास्त्रोक्त कायो पण जीव नथी, तेमनामा अरे अरे अरे, मैं संस्कृत पढ़ते पढ़ते भूल गया। षट प्रकाराः प्रज्ञप्ताः कायाः पुनः छह प्रकार ने शास्त्रोक्त कायोपन जीव नथी तेषु तेमनामा यद ज्ञानं भवति जे ज्ञान छे तत् जीवाः ते जीव छे इति च प्ररूपयन्ति हेम ज्ञानियो प्ररूपे छे એટલે કહે છે અભી તાત્પર્ય વૃત્તિ પઢેંગે હમ
એવમ ગાથા ચતુષ્ઠય પર્યંતમ પંચેન્દ્રિય વ્યાખ્યાન મુખ્યત્વેન ચતુર્થ સ્થલમ ગતમ એને ચાર ગાથાઓ પર્યંત પંચેન્દ્રિયો કે વ્યાખ્યાન કી મુખ્યતા સે ચોથા સ્થલ ગયા અત્ર પંચેન્દ્રિયા ઇતિ ઉપલક્ષણમ તેન કારણેન ગૌણ વૃત્ત્યા तिरिया बहुत प्यारा क्या कहते यहाँ पंचेंद्रिय उपलक्षण से गौण रीति से तिरियंच बहुत प्रकार के इति पूर्वोक्त गाथा खंडन एकेंद्रियादि व्याख्यान अपि ज्ञातव्यम यानी तिरियंच बहु अनेक प्रकार के होते हैं इस तरह से इसमें एकेंद्रियादि का भी व्याख्यान समझना चाहिए। उपलक्षण विषय दृष्टांत मार आह उपलक्षण किसको कहेंगे उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। हम कहते हैं एक बताए तो उसके इन्हें अन्य भी समझ लेना। कहते काकेभ्यो रक्षताम सर्पी इति उक्ते मार्जारादिभ्यो अपि रक्षणीयम इति यानी कौओं से उसका रक्षण करना चाहिए ऐसा अगर कहेंगे तो मार्जार यानी बिल्ली आदि से भी रक्षणीय है ऐसा उसका अर्थ समझना चाहिए। हम कहें किसी से कोई प्राणी है तो कौवे आदि वो उसको नहीं ले जाए जो नहीं मारे उसका अर्थ क्या है अन्य भी कोई प्राणी उसको नहीं मारे एक का नाम लिया तो अन्य समझ लेना इसको कहते उपलक्षण।
उसमें देखना है क्या
देख
ले काकेभ्यो रक्षताम सर्पी ही इति उक्ते मार्जारादेभी अपि रक्षणीयम इति क्या समझ में नहीं आ रहा है। 121 नंबर की गाथा है
परिवृत्ति ना इसमें तो कुछ नहीं हुआ वो जो शुरुआत में दिया है उसकी बात ही नहीं की उन्होंने।
एक सौ इक्कीस नंबर देख रहे हैं
121 का ही उसमें कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने।
चलो ठीक है
इंद्रिया जीव नहीं केवल इंद्रिया पे तो पृथ्वी आदि छह प्रकार वो परमाणु है वो भी जीव नहीं है ये उन्होंने तात्पर्य वृत्ति में लिया।
उसके पहले होना चाहिए इति गाथा चतुर्थ पर्यंतम
वो उन्होंने लिया ही नहीं उसके।
अच्छा
वहाँ से लिया ही नहीं
मार्जार की बात ही नहीं ली।
उपलक्षण किसको कहते हैं कि हमने एक का नाम लिया तो अरे यहाँ कुछ दिखा भी कहाँ गया उपलक्षण कुछ दिखा था भी। अच्छा अच्छा उसके पहले 20 में लिया है उत्थानिका देखो पंचेंद्र ऐसा उपलक्षण है कारण उस कारण से गौण रूप से तिरिया बहुपया ऐसा पूर्वोक्त गाथा खंडन द्वारा एक इंद्रिय आदि का कथन भी जानना चाहिए। उपलक्षण के विषय में दृष्टांत कहते हैं, अच्छा सर्पी यानी घी, कौओं से घी की रक्षा करना, मुझे लगा किसी प्राणी की, कौओं से घी की रक्षा करना ऐसा कहने पर बिल्ली आदि से भी रक्षा योग्य है। घी की रक्षा करने, घी रखा है,
देखो घी रखा है और कौवा आके खावे तो कौवे से घी का रक्षण करना चाहिए ये कहने से
सर्पी का अर्थ घी,
बिल्ली से भी रक्षण करना चाहिए बोलने की जरूरत क्या है।
सर्पी यानी घी, मुझे लगा कि कोई प्राणी होगा छोटा, काके भ्यो रक्षताम सर, नहीं सर्पी यानी सर्प नहीं, सर्पी यानी घी।
यानी एक से रक्षण करना बोले वो तो ऐसा हो गया कि गुरखा क्या करता है, तो कोई चोर आता जाता नहीं है, देखने को बोला था ना तुम्हें, देखा वो आया लेके गया, आपने देखने को बोला सर,
वो नहीं यहाँ उपलक्षण किसको कहना, एक का नाम लिया
वैसा यहाँ कह रहे।
हाँ
अबे आगे आगे बताएंगे ना,
उपलक्षण किसको कहना इसका ये उदाहरण है। अथ इंद्रियाणि पृथ्वी आदि कायाश्च, यानी जो इंद्रियों की अपेक्षा जो पांच प्रकार के बताए एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि, यानी जो इंद्रिया है और पृथ्वी आदि जो काया बताए शरीर है, वो निश्चयेन जीव स्वरूपम न भवन्ति इति प्रज्ञापयति, यानी वो जीवों के भेद, संसारी जीवों के भेद तो इस तरह से बताए इंद्रियों की अपेक्षा और काया की अपेक्षा, पर तो वो जीव नहीं है, आज संयोग में है और उसकी अपेक्षा जीवों के भी भेद कहने में आए हैं, परंतु इंद्रियां और काया ये शरीर के वो भेद है, वो जीवों के नहीं है, वो जीव नहीं है, काया वो जीव नहीं है, यानी शरीर वो जीव नहीं है। तो इंद्रियाणि जीवा न भवन्ति, इंद्रिया वो जीव नहीं है, न केवलम इंद्रियाणि, मात्र इंद्रियों की बात नहीं है, पृथ्वी आदि काया षट प्रकारा प्रज्ञप्ता ये परमागम है तेति, यानी परमागम में ही ये वर्णन है, ऐसा नहीं कि कोई भी कह रहा है, परमागम में ही सिद्धांत ग्रंथों में ही ये पृथ्वी आदि छह प्रकार के शरीर बताए गए है और वो भी जीव नहीं है। तरही किम जीव, तो फिर जीव कौन है, तो यद भवति तेषु मध्ये ज्ञानम जीव इति तत् प्ररूपयन्ति इति, कि जिसमें ज्ञान है वो जीव है, ऐसा ये कथन करते हैं। कौन करते हैं, तो ज्ञानी करते, ज्ञानी यानी भगवान, सर्वज्ञ भगवान ने किया। तद यथा, वह इस प्रकार है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण स्पर्शनादि द्रवेन्द्रियाणि तथा एव अशुद्ध निश्चयेन लब्धि उपयोग रूपाणि भावेन्द्रियाणि। क्या कहते हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, तो व्यवहार ने किसको कहेंगे, देखो व्यवहार ने दो प्रकार से होता है, दो द्रव्यों में इसका उसका संबंध बताना उसको भी व्यवहार कहेंगे, या एक ही द्रव्य में भेद करके कथन करना उसको भी व्यवहार कहेंगे, एक बताना, हाँ
दो को विकट करना,
ये दोनों प्रकार से व्यवहार नहीं हो सकता।
अभी देखो एक मिनट, थोड़ी सी मैं विचांतर कर रहा हूँ, अभी जब व्यवहार न कह रहे हैं, निश्चय न कह रहे हैं, वो कथन में भेद होता है, और हमारी मनीषा बेन कल क्या बोली, ना व्यवहार में तो एम कराए, यानी ये व्यवहार यानी कौन सा, ये लौकिक व्यवहार की बात करे, वो उसकी तो बात यहाँ है ही नहीं, ख्याल में ना, हमेशा अपनी यही भूल होती है कि निश्चय नहीं, यानी कई लोग आत्मा 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 करने वाला निश्चय वाले, और हम तो बाकी लौकिक की बातें देखते हैं, इसको दुख नहीं हुए उसको दुख नहीं, हम तो व्यवहार संभालते हैं, तो वो व्यवहार की बात ही नहीं। इधर अभी भाई साहब ने क्या बताया, एक द्रव्य के भेद करना, अलग अलग करना, उसको भी व्यवहार नहीं का कथन कहेंगे, यानी आत्मा कैसा है, तो जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये भेद करके समझाया, वो है व्यवहार नहीं, और एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया ऐसा कहना यह भी व्यवहार नहीं। अभी जैसे आपने बताया कि ऐसा सब ठीक हो गया, वो व्यवहार नहीं से कहने में ठीक है, लेकिन वो निश्चय के सामने उसकी तुलना करेंगे तो वो गलत साबित होता है।
अभी कैसा है तो ये जो
अनौपचारिक
द्रव्य इंद्रिया कैसे असद्भूत है ना, यानी वो जीव में नहीं है, जीव से अन्य जुदा पदार्थ है, इसलिए असद्भूत कह दिया और अनुपचार कर दिया उसमें। तो कहते कि उससे स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियाणी यद्यपि जीवा भण्यते, वो बीच वाला वाक्य छोड़ दो, क्योंकि अनुपचारित असद्भूत व्यवहार न से स्पर्शनादि यानी वो सभी पांचों इंद्रिय समझना ये द्रव्य इंद्रियों जो है उसको यद्यपि जीव कहने में आता है, एक वाक्य तथैव उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय न। अभी निश्चय तो है क्योंकि वो जीव का है, परंतु अशुद्ध कहा, क्योंकि शुद्ध नहीं है वो, अशुद्ध निश्चय से क्या है, लब्धि उपयोग रूपाणि भावेंद्रियाणि, ये भावेंद्रिया ने सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान के उघाड़ को भावेंद्रिय कहते हैं, और वो कैसा होता है, लब्धि और उपयोग रूप होता है, क्योंकि केवल ज्ञान कैसा है तो क्षायिक ज्ञान है, वो उपयोग रूप है, और यहाँ लब्धि और उपयोग यानी जानने की शक्ति है, और उपयोग कहीं एक में लगता है, एट ए टाइम सभी उपयोग रूप नहीं होता, जैसे पांचों इंद्रियों संबंधी जानने की शक्ति एट ए टाइम है पंचेंद्रिय जीव को, पर या तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जानने का उपयोग रूप चलेगा, क्रम से बाद में देखने रूप होगा, सुनने रूप होगा, क्रम क्रम से होगा, एट ए टाइम पांचों इंद्रियों के उपयोग रूप नहीं पाई जाती उससे, इसलिए ये जो सूक्ष्म ज्ञान है वो कैसे लब्धि और उपयोग मिलकर, यानी जानने की शक्ति और वो उपयोग, उपयोग यानी एट ए टाइम जितना उसका उपयोग लगा है किसको जानने में, ये मिलकर ये भावेंद्रिय होती है, इसको भावेंद्रिय कहते हैं, यद्यपि जीवा बनने थे उसको भी जीव कहते हैं। तथैव यानी जब हम एक इंद्रिय जीव कहेंगे तो उसके स्पर्शन एक द्रव्य इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय हो गई, वो तो शरीर की बात हो गई, और वहाँ भावेंद्रिय क्या है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जानने की शक्ति और जानने का उपयोग, ये भावेंद्रिय, ये मिलकर उसको हम एक इंद्रिय जीव कहते हैं। कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है, निश्चय से जो ज्ञान है वही जीव है, जिसमें ज्ञान है वो जीव है,
और व्यवहार से जो कहा है वैसा ही मानना मिथ्यात्व है।
देखो अभी क्या कहा, असद्भूत व्यवहार नहीं से स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रिया जड़ इंद्रिया उसको भी जीव कहा, और लब्धि उपयोग रूप भाव इंद्रिया उसको भी जीव कहा, ये इंद्रियों की बात हो गई। तथैव व्यवहारेण पृथ्वी आदि षट कायाश्च, यानी व्यवहार से पृथ्वी आदि षट कायों को भी जीव कहा, ये जीवा भण्यते उसमें भी लगाना, तथापि फिर भी शुद्ध निश्चय न, ऊपर अशुद्ध निश्चय से बताया था, अब ये शुद्ध निश्चय से क्या है, यद अतीन्द्रियम अमूर्तम, जो अतीन्द्रिय है इंद्रियों के द्वारा जो जानने में नहीं आता है, जो अमूर्तिक है, केवल ज्ञानांतर्भूतम अनंत सुखादि गुण कदम्बकम, यानी केवल ज्ञान के अंतर्भूत ऐसे अनंत सुखादि गुणों का समूह है, यानी सभी अनंत गुणों का एक रूप ऐसा अखंड पिंड है, सजीव इति सूत्र तात्पर्य, वह जीव है ऐसा सूत्र का तात्पर्य।
अभी समय व्याख्या जो है उसका अनुवाद हम देखते हैं, पेज नंबर 47 अनुवाद। आ व्यवहार जीवत्वना एकांतनी प्रतिपादननु खंडन छे, प्रतिपत्तिनु अर्थ वही है
हाँ।
लेकिन लिखा है प्रतिपत्ति, वो सही है। क्या कहते हैं, जिसको हम व्यवहार जीव कहते हैं, यानी हम एकेंद्रीय जीव कहेंगे तो वो तो व्यवहार का कथन है, लेकिन वो सही नहीं है, उसका खंडन करते हैं,
यानी वो एकांत से उसी को मानेंगे जीव तो खंडन, वो व्यवहार से कह सकते हैं, पर निश्चय से जीव कौन है वो जानने वाला वो जीव है, वो जुदा है उससे।
फिर से आ व्यवहार जीवत्व, जीवत्व यानी जीवपना, जीवपना ना एकांतनी, यानी वह एकांत ही है, यानी वो व्यवहार जीव है वही सच्चा जीव है, यानी जीव
सर्वथा
इंद्रिय वाला है ऐसा माने, तो सिद्ध भगवान को कितने इंद्रिय है? एक भी नहीं है। तो वो जीव है कि नहीं? तो हमारा ऐसा मानना खोटा है। तो व्यवहार जीवत्वना एकांतनी प्रतिपत्तिनु यानी कथननु खंडन करे छे। अर्थात जेने मात्र व्यवहार नहीं थी जीव केवामा आवे छे तेनो खरेखर जीव तरीके स्वीकार करवो उचित नथी एम आई समझायो छे। अभी तो क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छी तरह से। जे आ एकेंद्रिय वगैरह तथा पृथ्वी कायिक वगैरह जीवो केवामा आवे छे ते अनादि जीव पुद्गलनो परस्पर अवगाह देखीने व्यवहार नहीं थी। इन्हें दो द्रव्यों को मिलाकर एक कहा ना, तो वो कैसा है? व्यवहार नहीं थी जीवना प्राधान्य द्वारा जीव ने मुख्यता अर्पीने एटले आपीने जीवो केवामा आवे छे। ये व्यवहार का कथन क्यों करते हैं? तो हमें पता ही नहीं लगता है कि इसमें जीव है। जैसे आपने परसों किसी ने बोला था कि शंख ये जीव है, हमें मालूम ही नहीं है। शंख ये उसका शरीर है, अंदर उसमें जीव है। तो क्या कहते हैं? तो वो जीवों की हिंसा से हम बचे इसलिए व्यवहार ने का कथन के भाई तीन इंद्री वाला जीव है, दो इंद्री वाला जीव है। मैंने एक बार बताया था आपको, याद होगा। तो हमारे एक मित्र के यहाँ भोजन करने के लिए, वो भोजन करते थे, हम गए थे मिलने को रात को, तो इसमें बैठे थे, क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल पे। तो यहाँ से लेके वहाँ तक वो चींटियाँ लाइन लगी थी। तो अरे यार कैसा खाना खा रहे थे ऐसे चींटियाँ? तो उसने पटक पटक पटक, यानी वो जीव है और मैं जीव को मार रहा हूँ, ऐसा अगर उसको एहसास होता तो ऐसा करता क्या? लेकिन ये ऐसी वृत्ति है लोगों की, इसलिए हमें ये इंद्रियां क्या कहते हैं, ये अमुक इंद्रिय का जीव है, ये हमें उसको पहचान कराने के लिए व्यवहार ने से कथन होता है। तो क्या कहा फिर से? जे आ एकेंद्रिय वगैरह तथा पृथ्वी का एक वगैरह जीवो केवामा आवे छे ते अनादि जीव पुद्गलनो परस्पर अवगाह यानी एक साथ रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, देखीने व्यवहार नहीं थी जीवना प्राधान्य द्वारा जीव ने मुख्यता अर्पीने जीवो केवामा आवे छे। अभी ख्याल में आया ना? निश्चय नहीं थी। अभी सत्यवाद क्या है? निश्चय यानी सत्यार्थ क्या है? तेमनामा स्पर्शन आदि इंद्रियो यानी जीव में स्पर्शन आदि इंद्रियो तथा पृथ्वी आदि कायो जीवना लक्षणभूत चैतन्य स्वभावना अभाव ने लीधे जीव नथी। यानी वो काया में और इंद्रियों में ज्ञान वगैरह कुछ लक्षण नहीं है ते जीव नथी। तेमनामा जे स्वपरनी ज्ञप्ति रूपे जाणवा रूपे प्रकाशतु ज्ञान छे तेज गुण गुणीना कथनचित अभेद ने लीधे गुण याने जो गुण जिसको कहते गुणी याने जो
ज्ञान और जीव।
आपने उदाहरण दे दिया पटाक से। गुणी याने द्रव्य, गुण याने यहाँ ज्ञान हो गया और द्रव्य याने जीव। गुणी याने जीव गुण गुणीना कथनचित अभेद ने लीधे जीवपने प्ररूपवामा आवे छे। हमने 5 मिनट पहले शुरुआत की थी,
यहाँ ज्ञान को ही जीव कहा है।
अभी यही रुकते हैं। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक